राष्ट्रवाद सामान्य तौर पर राष्ट्र और राष्ट्रवाद को एक ही समझने की रूटी की जाती है, लेकिन इसमें आधारभूत अंतर है। राष्ट्र एक राजनीतिक विचार है, जबकि राष्ट्रवाद अपने मूल रूप में एक आध्यात्मिकता तथा सांस्कृतिक भावना है। राष्ट्रवाद विभिन्नता में एकता का तत्व रूप है। राष्ट्रवाद भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज तथा सामान्य भूमि आदि के प्रति मानवीय भावनाओं का अस्तित्व है। वर्तमान समय में राष्ट्रवाद का अर्थ हम एक ऐसी आध्यात्मिक भावना से लेते हैं जो किसी भूभाग के नागरिकों के जीवन तथा आदर्शों से संबंध रखती है और संपूर्ण समाज का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक कल्याण चाहती है। विद्वान जर्मन ने राष्ट्रवाद की परिभाषा करते हुए कहा है, राष्ट्रवाद मेरे लिए एक राजनीतिक प्रश्न बिल्कुल नहीं, आवश्यक रूप से यह एक आध्यात्मिक प्रश्न है। राष्ट्रवाद धर्म की भांति व्यक्तिगत है, मनोवैज्ञानिक है, एक मानसिक स्थिति है तथा विचार करने, जीवित रहने और अनुभव करने का एक तरीका है। राष्ट्रवाद से संबंधित इन परिभाषाओं के संबंध में एक दूसरे से बहुत आर्थिक भेद होते हुए भी इन परिभाषाओं में यह बात सामान्य रूप से पाई जाती है कि राष्ट्रवाद एक होने की सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि राष्ट्रवाद की निश्चित परिभाषा करना कठिन है, परंतु यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक क्रम में यह पृथक अस्तित्व की उस चेतना का प्रतीक है जो सामान्य आदतों, परंपरागत रीति रिवाजों, स्मृतियों, आकांक्षाओं, अवर्णीय सांस्कृतिक संप्रदायों तथा हितों पर आधारित है। राष्ट्रवाद का इतिहास, राष्ट्रवाद की भावना का विकास कब और कैसे हुआ, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सामान्य अनुमान के अनुसार केवल यही कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में राष्ट्रवाद का विकास तब हुआ होगा जब लोगों ने अपनी मूल सामाजिक प्रवृत्तियों के फलस्वरूप समूहों और कबीलों में रहना आरंभ किया, लेकिन यूनान के नगर राज्यों की परंपरा ने राष्ट्रवाद के स्थान पर स्थानीयता की प्रवृत्ति को जन्म दिया और रोमवासियों की राष्ट्रीय प्रवृत्ति भी विशाल साम्राज्य की भावना के साथ स्थापित लुप्त प्राय हो गई। इस प्रकार मध्ययुग भी पोप और राजाओं के पारंपरिक युद्ध के कारण राष्ट्रवाद के विकास हेतु शुभ शुद्ध नहीं हुआ। इटालियन विचारक और राजनीतिक मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है। उसने इटली की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने की दिशा में बहुत कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त की। इसी समय ब्रिटेन और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध ने इन दोनों देशों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया। 18वीं सदी के अंत में यूरोप के इतिहास में पोलैंड के बंटवारे को की दर्दनाक घटना घटी। पोलैंड के इस अन्यायपूर्ण विभाजन से पोलिश जनता ने राष्ट्रवाद की प्रचंड भावना जागृत हुई और पोलिश राष्ट्रवाद ने यूरोप के सामने राष्ट्रवाद का एक नवीन चित्र प्रस्तुत किया। सन 1779 में फ्रांस की राजक्रांति ने यूरोप में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। यूरोप की यह लहर अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका तक पहुंची और फ्रांस एवं अमेरिका की क्रांतियों ने इन लपटों ने समस्त विश्व में प्रबल राष्ट्र भावना का जागृत किया। नेपोलियन की नीति भी रूस, जर्मनी, इटली तथा स्पेन आदि देशों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई। इसी समय बिस्मार्क ने लोह तथा रक्त की नीति द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया। मेजेनी, गेराबाल्दी तथा कैवूर ने इटली में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने उसके एकीकरण को पूर्ण किया। 19वीं सदी में तो राष्ट्रवाद राज्यों के संगठन की आधारशिला बन बैठी। धीरे धीरे यूरोप के सभी राज्य राष्ट्रवाद के आधार पर पुनर्गठित हुए और उन्होंने नवीन राजनीतिक इकाइयों का रूप लिया। सन 1790 के पश्चात औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जिसे आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद की यह भावना एशिया और अफ्रीका में तीव्र गति से बढ़ने लगी और द्वितीय महायुद्ध के बाद तो एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद की बाढ़ सी आ गई। राष्ट्रवाद की प्रबलता के कारण स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुए और इसी राष्ट्रवाद की भावना के कारण आज एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं तथा शेष प्रतंत्र राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं। राष्ट्रीयता की यह भावना वर्तमान समय में रंग भेद और आर्थिक शोषण आदि के विरुद्ध भी संघर्ष कर रही है। राष्ट्रवाद के निर्माण के मुख्य तत्व। लॉस्की ने लिखा है कि राष्ट्रवाद के विचार को परिभाषित करना सरल नहीं, क्योंकि ऐसे कोई निश्चित तत्व नहीं जिनमें इनकी खोज की जा सके। राष्ट्रवाद की एक भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विषय है और जिस प्रकार राष्ट्रवाद को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना कठिन है, उसी प्रकार यह निश्चित करना भी कठिन है कि राष्ट्रवाद का निर्माण किन तत्वों के आधार पर होता है। राष्ट्रवाद के निर्माण के तत्वों के संबंध में कोई सर्वव्यापक तथा सर्वसामान्य नियम नहीं है। इस संबंध में केवल कुछ ऐसे सामान्य तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है जो कि राष्ट्रवाद के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिनमें कुछ ही हद तक विद्यमानता के लिए राष्ट्रवाद का अस्तित्व हो सकता है। इन तत्वों का उल्लेख निम्न प्रकार है। पहला, धार्मिक एकता। राष्ट्रवाद के विकास में धर्म का एक महत्वपूर्ण योग रहा। यहूदियों, तुर्कों और अरबों में राष्ट्रवाद का विकास प्रमुख रूप से धर्म के कारण ही हुआ और पूर्व के अनेक देशों में तो अब तक भी धर्म को राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व माना जाता है। परंतु अब पश्चिमी देशों में धर्म का प्रभाव कम हो गया। अमेरिका के राष्ट्रीय जीवन में धर्म ने शायद ही कभी प्रवेश किया हो। इस प्रकार धर्म राष्ट्रवाद के निर्माण में अब उतना महत्वपूर्ण तत्व नहीं रहा जितना कि वह पहले कभी था। हेज के अनुसार अधिकांश रूप में आधुनिक राष्ट्रवाद धार्मिक विश्वास तथा कार्यों की एक रूपता पर बिना जोर दिए ही फल फूल रही है। राष्ट्रवाद पर धर्म के संबंध में रैबजे मयोर ने ठीक ही लिखा है कि जहां कुछ उदाहरणों में धार्मिक एकता ने राष्ट्रवाद की एकता को जन्म देने के लिए और उसे प्रबल बनाने में बहुत कुछ योग दिया है, वहां दूसरे उदाहरणों में धार्मिक विदेश ने राष्ट्रवाद की एकता के मार्ग में भारी अवरोध उत्पन्न किए हैं। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि धर्म अब राष्ट्रों के निर्माण में प्रथम महत्व का तत्व नहीं रह गया। दूसरा, सामान्य संस्कृति तथा परंपराएं। राष्ट्रवाद के विकास में सामान्य संस्कृति तथा परंपराओं का भी बहुत अधिक महत्व है। सामान्य संस्कृति का अभिप्राय उन आचार विचार एवं रीति रिवाजों से होता है जो एक समूह के मनुष्यों की एक सूत्र में बांधे रहते हैं। सामान्य साहित्य तथा इतिहास भी इसके अंतर्गत हैं। सामान्य संस्कृति तथा परंपराओं के द्वारा मनुष्य में सहयोग तथा एकता की भावनाएं विकसित होती हैं और इस सांस्कृतिक चेतना के आधार पर ही राजनीतिक चेतना का विकास संभव हो पाता है। राष्ट्रवाद, इतिहास तथा सामान्य परंपराएं इनमें से एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास करती हैं जिसके द्वारा सामूहिक चेतना और राष्ट्रीय दृष्टिकोण की उत्पत्ति होती है। J.S. मिल के अनुसार सामान्य संस्कृति, परंपराएं तथा इतिहास राष्ट्रवाद के एकमात्र आवश्यक तथा अपरिहार्य तत्व है। सामान्य परंपराओं तथा एक निश्चित मस्तिष्क और चरित्र में प्रदर्शित होने वाली एक निश्चित संस्कृति के बिना राष्ट्रवाद की भावना का विकास संभव नहीं। भाषा की एकता भी राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है और राष्ट्रवाद के विकास में जातीय एकता की अपेक्षा भाषा की एकता का महत्व बहुत अधिक है। रैमजे मेयर के शब्दों में राष्ट्र के निर्माण में भाषा जाति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। बर्नार्ड जोजफ ने कहा है कि भाषा राष्ट्रीयता का सबसे शक्तिशाली तत्व है। फिक्टे ने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक वस्तु है, वह परमात्मा के मन की अभिव्यक्ति है। इस एकता का मुख्य बंधन भाषा है। भारत में भी प्रबल जनमत के कारण भाषा के आधार पर राज्यों की जो रचना की गई उससे राष्ट्रीयता के निर्माण में भाषा का महत्व नितांत स्पष्ट है। सामान्य भाषा ऐतिहासिक परंपराओं को जीवित रखने में सहायक होती है और एक ऐसे राष्ट्रीय मनोविज्ञान को जन्म देती है जिससे सामान्य नैतिकता और सामान्य राष्ट्रवाद की भावना का विकास संभव होता है। लेकिन सामान्य भाषा के बिना भी राष्ट्रवाद का विकास संभव हो सकता है। एक और भाषाई क्षेत्र भी पृथक पृष्ठक राष्ट्र हो सकते हैं। उदाहरणतः स्विट्जरलैंड और भारत में एक से अधिक भाषाएं प्रचलित होने पर भी यह एक राष्ट्र है और दूसरी ओर अमेरिका और कनाडा में भी एक ही भाषा बोली जाने पर भी ये पृथक पृथक राष्ट्र है। चौथा, भौगोलिक एकता। राष्ट्रवाद के विकास में भौगोलिक एकता का भी महत्वपूर्ण हाथ है। सर्वप्रथम तो भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु का मनुष्यों के चरित्र तथा शारीरिक गठन पर निश्चित प्रभाव पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे मनोवैज्ञानिक गुणों की उत्पत्ति होती है जो सामान्य राष्ट्रीयता के भाव को जन्म देते हैं। व्यक्ति अपने समीप के लोगों को जितना समझ सकते हैं और उनके प्रति जिस प्रकार की सहानुभूति पैदा हो सकती है वह दूर बसे हुए लोगों के प्रति संभव नहीं। वस्तुतः देश की प्राकृतिक सीमाएं राष्ट्रवाद के विकास में सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुई और हर मनुष्य में अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम होता है। भारत या भारत माता जैसे शब्दों को सुनकर हमारे शरीर में स्फूर्ति तथा उल्लास का जो संचार होता है वह इस बात का प्रमाण है। मैजिनी का कथन है, हमारी जन्मभूमि ही हमारा घर है, ऐसा घर जो ईश्वर ने दिया है। उसमें एक ऐसे परिवार का स्थान दिया गया है जिसका हमारे प्रति और हमारा उसके प्रति आगाध प्रेम है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में एक निश्चित भूभाग पर निरंतर एक साथ रहना राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है, किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। 1788 तक यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था, लेकिन फिर भी उनमें राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी। इस प्रकार जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा प्राकृतिक नहीं, फिर भी इन राज्यों के निवासियों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रूप से विद्यमान है। परंतु इन अपवादों के बावजूद सामान्य भौगोलिक एकता को राष्ट्रवाद के निर्माण में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व मानना होगा। पांचवा, जातीय एकता। जातीय एकता भी राष्ट्रवाद के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और एक लंबे समय तक इसे राष्ट्रवाद का मुख्य आधार माना जाता रहा है। जिस जर्मन ने राष्ट्रवाद के विकास में जातीय एकता के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है, राष्ट्रवाद में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक चेतना का भाव विद्यमान होता है जिसमें सामान्य जातीयता का तत्व संभव है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किंतु दिन प्रतिदिन राष्ट्रवाद के निर्माण के तत्व के रूप में जातीयता का महत्व कम होते जा रहा है और प्रोफेसर हेज के शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि कहीं रक्त की पवित्रता मिल सकती है तो वह केवल असभ्य जातियों के मध्य में ही संभव है। पिल्सबरी और रेमजे मेयर द्वारा भी इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी और भारत आदि देशों में विभिन्न जातियों के होते हुए भी उनमें राष्ट्रवाद की एकता के दृढ़ भाव दिखाई देते हैं और जातीय एकता का आधार मात्र एक कल्पना ही है। प्रोफेसर जोजफ का विचार है कि राष्ट्रवाद जातीयता को चीरकर पार निकल जाती है। इस संबंध में गॉर्नर ने ठीक ही लिखा है कि वंश केवल एक भौतिक तत्व है, जबकि राष्ट्रवाद आध्यात्मिक पूर्ण और एक मिश्रित तत्व है। वंश और राष्ट्र को एक समझना चारित्रिक सद्विवेक को आंगलिक जीवन के अधीन बनाना और पशुवृत्ति को उभारना है। सातवां, सामान्य आर्थिक हित। आधुनिक युग में राष्ट्रवाद के निर्माण में आर्थिक तत्व को पर्याप्त शक्तिशाली माना जाता है और जापानी एवं ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रवाद का विकास प्रमुख रूप से सामान्य आर्थिक हितों के आधार पर ही हुआ। सामान्य आर्थिक हित मनुष्य में अपने हितों के प्रति चेतना उत्पन्न करते हैं और उन्हें एकबद्ध रहने के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रवाद के निर्माण में सामान्य आर्थिक हित का पर्याप्त महत्व होने पर भी इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अकेले सामान्य आर्थिक हित राष्ट्रवाद का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर आशीर्वादम का कहना है, यदि आर्थिक हित ही राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए पर्याप्त है तो हमें अनेक ऐसे राष्ट्रीय जातियों की आशा करनी चाहिए जिसका निर्माण या तो केवल श्रमिकों द्वारा या केवल पूंजीपतियों के द्वारा होता है। रेनॉन ने सत्य ही कहा है कि आर्थिक हितों की एकता एक कस्टम संघ का निर्माण तो कर सकती है परंतु एक राष्ट्र का नहीं। सातवां, सामान्य आधिपत्य तथा कष्ट। राष्ट्रवाद के विकास में सामान्य आधिपत्य तथा कष्टों का भी महत्व कम नहीं। विदेशी शासन के प्रति घृणा का भाव समान शत्रु और आर्थिक अवनति की सामान्य दशा नागरिकों में एकता की भावना उत्पन्न करती है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के जहां अन्य कारण थे, वहां ब्रिटिश शासन का संगठित आतंक तथा प्रशासन में विदेशी भावना का इसका कारण थी। घाना तथा सोमालीलैंड जैसे राष्ट्रों का निर्माण तो इसी भावना के आधार पर हुआ है, किंतु समान उत्पीड़न तथा कष्ट सदैव राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में सफल सिद्ध नहीं होते। और प्रोफेसर जोजफ के शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी एक समूह का उत्पीड़न स्वतः ही उसे राष्ट्रवाद में परिवर्तित नहीं कर देता। राजनीतिक चेतना तथा आकांक्षाएं। सामान्य राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना तथा एक आकांक्षाओं भी राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योग देती है। राष्ट्रवाद के विकास में यह राजनीतिक तत्व दो प्रकार से कार्य करती है। प्रथम, भूतकालीन राजनीतिक जीवन की सामान्यता के रूप में तथा द्वितीय, भविष्यकालीन राजनीतिक जीवन की आकांक्षाओं की समानता के रूप में। समस्त भारतीयों की समान राजनीतिक आकांक्षाओं, स्वाधीन राजनीतिक जीवन की स्थापना और लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना ने भारतीयों को राष्ट्रवाद के सूत्र में बांधने का कार्य किया। लेकिन राष्ट्रवाद के विकास में अकेला यह तत्व बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। ऊपर जिन तत्वों की विवेचना की गई है वे राष्ट्रवाद के विकास और निर्माण में सहायक होते हैं, किंतु ये सभी तत्व राष्ट्रवाद के लिए अनिवार्य नहीं है। डूगल महोदय का कथन है कि राष्ट्रवाद की वास्तविक खोज भौगोलिक प्रदेश, वंश, भाषा, इतिहास या आर्थिक समानता आदि में करना उचित नहीं। इनमें से प्रत्येक और ये सभी तत्व यद्यपि वास्तविक और महत्वपूर्ण होते हैं और इतिहास के निर्माण एवं राष्ट्रों के अस्तित्व पर इनके द्वारा प्रभाव डाला जाता है, परंतु राष्ट्रीयता के निर्माण में ये तत्व अप्रत्यक्ष रूप से प्राणियों के भावों, विचारों, विश्वासों
और अनुभवों को प्रभावित करते हुए भी भाग लेते हैं। राष्ट्रवाद के निर्माण में कौन सा तत्व अधिक सहायक होता है और कौन सा कम, यह विवाद बिल्कुल व्यर्थ है। वस्तुतः राष्ट्रवाद के निर्माणकारी तत्वों की उपमा उस ताने बाने से दी जाती है जो अनेक धागों से बुना जाता है और जिसके बुनने की प्रक्रिया इतनी अस्पष्ट होती है कि यह बताना अत्यंत कठिन होता है कि उस ताने बाने को कौन से धागे ने दूसरे धागे से अधिक मजबूत बनाया है। वस्तुतः यह लोगों के आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन का भेद है जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। क्या भारत एक राष्ट्र है? अनेक बार विदेशियों और कभी कभी स्वयं भारतवासियों द्वारा भी यह प्रश्न किया जाता है कि राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्रीय इकाई होते हुए भी क्या सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक राष्ट्र है? भारत में अंतर्गत जो अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं, पहनावे, रीति रिवाज और जीवन क्रम है, उससे उनके संदेह को बल मिलता है कि और वे इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि भारत तो एक राष्ट्र न होकर एक उपमहाद्वीप है जिसमें अनेक राष्ट्रीय भावनाएं निवास करती हैं। भारत के एक राष्ट्र होने में इसी प्रकार का संदेह एक अमेरिकी विज्ञानी सेलिक हरिसन ने अपनी पुस्तक इंडिया द डेंजर डिकेट्स एहेड में व्यक्त किया। वास्तव में इस प्रकार का संदेह राष्ट्रवाद के विचार और भारतीय संस्कृति के स्थायी अध्ययन पर आधारित है। राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का तात्पर्य भाषा, धर्म या जाति की समानता से नहीं वरन देश के नागरिकों के मन और मस्तिष्क में विद्यमान आधारभूत एकता की भावना से होता है। इसके अतिरिक्त भाषा, धर्म, जाति और रीति रिवाजों की विभिन्नता के होते हुए भी हमारे देश में एक आधारभूत एकता विद्यमान रही है और वैदिक युग से लेकर वर्तमान युग तक एकता के इस भाव को सरल और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। न केवल भारतीयों वरन गुड़ के विदेशी विवेचक भी इस आधारभूत एकता को स्वीकार करते हैं। सर हर्बर्ट रिजले ने भी लिखा है कि भारत में धर्म, रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और शारीरिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष रूप एक रूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र तथा व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भी यह विचार व्यक्त किया है। विभिन्नता में एकता सदैव से भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है और ब्रिटिश शासनकाल में एक सी भाषा, एक सी राजनीति और एक सी कठिनाइयों में पलकर हमारी राष्ट्रीयता सुदृढ़ हुई। अभी भी प्रांतीयता, भाषा और धर्म के झगड़ों से ग्रस्त देश के सम्मुख जब 1962 में चीनी आक्रमण, 1971 में पाक आक्रमण और अभी दिसंबर 1919 में पुनः पाक आक्रमण की चुनौती आई तो संपूर्ण देश एक इकाई के रूप में आक्रमण का सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ। मातृभूमि के प्रति अपनेपन और एकता की भावना का यह प्रमाण है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत एक निसंदेह राष्ट्र आज भी है। राष्ट्रवाद एक वरदान के रूप में राष्ट्रवाद को यदि शुद्ध और सही अर्थों में समझा जाए और इसे संयमित रूप से ही अपनाया जाए तो यह निश्चित रूप से एक वरदान है और यह विश्व की अनेक समस्याओं को सुलझाने में अधिक सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है। इन्हीं कारणों से अनेक व्यक्तियों ने राष्ट्रवाद की उपासना को श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। राष्ट्रवाद को निम्नलिखित बातों के आधार पर मानव जाति के लिए वरदान कहा जा सकता है। पहला, राष्ट्रवाद देशभक्ति का प्रेरक है। राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा गुण व्यक्ति में स्वयं के देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। जब व्यक्ति अपने देश से प्रेम करने लग जाते हैं तो वे प्रत्येक संभव तरीके से देश की प्रगति का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रवाद की भावना से उत्पन्न भ्रातृत्व भाव के आधार पर व्यक्ति अपने ही देश में रहने वाले व्यक्तियों के हितों में कार्य करते हैं। देश के गौरव के लिए प्रत्येक व्यक्ति बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद स्वदेश प्रेम को जन्म देता है। दूसरा, राष्ट्रवाद एक संयोजक तत्व है। एक देश के अंतर्गत भाषा, जाति और धर्म के अनेक पद हो सकते हैं, किंतु इन भेदों के होते हुए भी राष्ट्रीयता के भाव को बलवती होने पर धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति संबंधी समस्त भेद स्वतः ही महत्वहीन हो जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय विभिन्नताओं में एकता उत्पन्न करने का कार्य करती है। राष्ट्र शब्द का एकता का ऐसा प्रतीक है कि उसके नाम पर व्यक्ति अभी दूसरे सभी भेद भूल जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता ने ही इस देश के विभिन्नताओं में एकता उत्पन्न करने का कार्य किया है। तीसरा, राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है। राष्ट्रवाद अपने वास्तविक रूप में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का एक ऐसा प्रकार है जो यह स्वीकार करता है कि एक देश की जनता को अपनी राजनीतिक व्यवस्था और शासक चुनने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रवाद तानाशाही को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना और मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा का एक प्रयास है। यूरोप के इतिहास का अध्ययन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जिस देश में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो, वहाँ की जनता कभी भी विदेशी राज्य अथवा निरंकुश एवं गैर जिम्मेदार शासन को सहन नहीं कर सकती। ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड आदि देशों में राष्ट्रवाद के कारण ही प्रजातंत्र की जड़ें बहुत अधिक गहरी जमी हुई हैं। चौथा, राष्ट्रवाद साहित्य और संस्कृति का विकास करता है। राष्ट्रवाद साहित्य और संस्कृति के प्रेरक तत्व के रूप में ही कार्य करता है। यूनान के नगर राज्यों के साहित्य और संस्कृति के विकास में महाकवि होमर की राष्ट्रीय कविताओं ने बहुत अधिक योगदान दिया तथा फ्रांस के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर दांते और वाल्टेयर ने अपनी अमर कृतियों की रचना की। टेनिसन, स्टीफेन स्पेंडर, सर वाल्टर रेले शैली तथा थॉमस पेन ने राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर साहित्य सेवा की। आधुनिक भारत में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामा प्रसाद पांडे आदि कवियों ने राष्ट्र के विचार से प्रेरणा लेकर हिंदी साहित्य में अभिवृद्धि की। पांचवा, राष्ट्रवाद राज्यों का स्थायी बनाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्यों का स्थायी आधार बन सकती है राष्ट्रवाद के द्वारा। यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में 200 वर्षों में अनेक बार भौगोलिक सीमा, जाति तथा भाषा आदि के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, किंतु ये राज्य स्थायी नहीं रह सके। अंत में राष्ट्रीय चेतना के आधार पर किया गया आधुनिक विभाजन ही अधिक स्थायी और दृढ़ दिखाई देता है। बर्गेस के शब्दों में राष्ट्रीयता राज्य की राजसत्ता और स्वाधीनता के संबंध की समस्याओं का समाधान उपस्थित करता है। इस कारण यह परम शक्तिशाली राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सबसे अधिक स्थायी भी है। छठा, राष्ट्रीय विभिन्नताओं की रक्षा करता है। जिस प्रकार एक उपवन का सौंदर्य उसमें खिलने वाले विभिन्न फूलों से ही होता है, उसी प्रकार मानव सभ्यता और संस्कृति के उत्थान हेतु एकता के साथ साथ विभिन्नता व्यापक आवश्यक है। सोवियत रूस में छोटी बड़ी लगभग 100 राष्ट्रीय जातियां निवास करती हैं। भारत में भी धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग को अपने साहित्य और संस्कृति के विकास का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार राष्ट्रवाद विभिन्नताओं को नष्ट कर एकता उत्पन्न करने के बजाय विभिन्नताओं में ही एकता उत्पन्न करता है। राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के विकास में सहायक। यदि कुछ लोग राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को परस्पर विरोधी रूप में चित्रित करते हैं, लेकिन वास्तव में ही वह सीढ़ी है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार जब तक एक व्यक्ति अपने घर वालों से प्रेम नहीं करता तब तक वह अपने प्रेसियों से प्रेम नहीं कर सकता, उसी प्रकार संसार के समस्त राष्ट्रों के प्रेम करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करे। राष्ट्रवाद हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर वसुदेव कुटुंबकम की प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद को अपने विशुद्ध रूप से देश प्रेम और विश्व प्रेम पर्यायवाची कहा जा सकता है। राष्ट्रवाद अभिशाप के रूप में विशुद्ध देश प्रेम कभी बुरा नहीं हो सकता, किंतु राष्ट्रवाद या देश प्रेम की यह भावना व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से संबंध रखती है और व्यक्ति का अपने देश के प्रति यह प्रेम कभी कभी इतना उग्र और संकीर्ण हो जाता है कि उसका दूसरे राज्यों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वरदान रूपी राष्ट्रवाद अभिशाप के रूप में परिणित हो जाती है। राष्ट्रवाद के इसी रूप को रखकर आलोचकों ने इस पर निम्नलिखित आक्षेप किए हैं। पहला, राष्ट्रवाद प्राय शोषण तथा स्वार्थ की शासन की ओर ले जाता है। राष्ट्रवाद की भावना प्राय बहुत शीघ्र ही उग्र हो जाती है और इसमें असहिष्णुता एवं अहंकार को जन्म मिलता है। व्यक्ति अपने राष्ट्र को ही सब कुछ समझकर अन्य राष्ट्रों के मूल्य पर अपने स्वार्थ साधन का प्रयत्न करने लग जाते हैं। इसलिए कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की भर्त्सना करते हुए एक इसे समूची जाति का संगठित स्वार्थ कहा है। उन्हीं के शब्दों में यह आत्मपूजा स्वार्थी उद्देश्यों को संगठित शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं। हेज के अनुसार राष्ट्रवाद जाति या राष्ट्र के संबंध में अभिमान और गर्व भरी एक मानसिक प्रवृत्ति है जिससे अन्य राष्ट्रों के प्रति तुच्छता और विदेश के भाव आ जाते हैं। दूसरा, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है। राष्ट्रवाद के विचार का तार्किक परिणाम एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत है और यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रवाद के विरुद्ध है। राष्ट्रवाद की भावना के कारण राज्यों का दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय विचारों की प्रगति रुक जाती है। राष्ट्रवाद के विचार के कारण ही विश्व सरकार संबंधी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। प्रोफेसर जोजफ का कहना है कि राष्ट्रवाद एक भयानक सिद्धांत है और विश्व के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तीसरा, राष्ट्रवाद सैन्यवाद और युद्ध को जन्म देता है। देश प्रेम अपने मूल रूप में कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन यह प्रवृत्ति अधिक उग्र हो जाती है तो इसमें सैन्यवाद और युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। इतिहास बताता है कि इन्हीं भावनाओं के प्रचलन के कारण फ्रांस और जर्मनी के नागरिक एक दूसरे को अपना शत्रु समझते रहे और सैकड़ों वर्षों तक इन दोनों देशों के बीच युद्ध होते रहे। संकीर्ण राष्ट्रवाद सैन्यवाद की ओर बढ़ाता है जिसका अंतिम परिणाम युद्ध होता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण राष्ट्रवाद ही था। चौथा, राष्ट्रवाद का परिणाम साम्राज्यवाद है। राष्ट्रवाद उग्र रूप ग्रहण कर लेने पर अपने नागरिकों को बहुत अधिक स्वार्थी और अंधा देशभक्त बना देता है। उनमें झूठे अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है और वे मेरा देश ही सही है या गलत, मैं सदैव उसके लिए हूँ का भाव अपना लेते हैं। परिणाम ये देश पिछड़े हुए देशों के शोषण की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं। सन 1920 और 1939 तक का यूरोप इस सबसे बड़ा उदाहरण है। फ्रांस की राज क्रांति से जागी हुई राष्ट्रीयता की भावना संपूर्ण यूरोप में इस तीव्रता के साथ गूंजी कि सभी देश अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रयत्न में लग गए। पांचवा, राष्ट्रवाद आत्मनिर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता सिखाता है। आत्मनिर्भरता कुछ विशेष संदर्भों में एक अच्छा शब्द प्रतीत होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की यह मांग है कि राष्ट्र आत्मनिर्भरता के स्थान पर परस्पर निर्भरता के मार्ग को अपनाए। राष्ट्रवाद इस मार्ग की एक बहुत बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता की भावना अपने नग्न रूप में राष्ट्रीय अह तथा एकाकीपन का विचार उत्पन्न करती है और राष्ट्र को यह सिखाती है कि उसे अपने उपयोग की सभी वस्तु में अपने ही यहाँ पर उपलब्ध करते हुए विदेशी माल का बहिष्कार करना चाहिए। कभी कभी आत्मनिर्भरता की यह बात मूर्खता की सीमा तक पहुँच जाती है। विश्व के अनेक राष्ट्र हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। उन राष्ट्रों के संबंध में राष्ट्रों की यह मनोवृत्ति निसंदेह अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार राष्ट्रवाद में सभ्यता और संस्कृति के विकास और विनाश दोनों के ही बीच निहित है। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करता कि अपने विशुद्ध रूप में राष्ट्रवाद मानव जाति का सबसे बड़ा मित्र है, किंतु राष्ट्रवाद की यही भावना उग्र रूप धारण कर लेती है। तो इससे विभिन्न राष्ट्र अपने स्वार्थ साधन के लिए शोषण के मार्ग की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, जिसका अंतिम परिणाम सैन्यवाद और युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि लोकप्रिय शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय आगमागमन द्वारा जातीय असहिष्णुता और राष्ट्रीय अह को नष्ट करने का राष्ट्रवाद को विशिष्ट रूप प्रदान किया जाए। ऐसा होने पर ही इस बात की आशा की जा सकती है कि राष्ट्रवाद मानव कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। हमारा प्रयत्न राष्ट्रवाद को विशिष्ट और परिष्कृत रूप धारण करना है, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर हेज ने लिखा है, जब राष्ट्रवाद पवित्र देशभक्ति का पर्यायवाची बन जाता है तो उस समय यह विश्व तथा मानव जाति के लिए असाधारण वरदान सिद्ध हो जाता है।